मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे जो विश्व आतंकवाद जो आपको अभी देखने में भी मिल रहा है और श्रीलंका में अभी आप जो घटना घटित हुई है उसके बारे में जानते हैं, उसको आधार बना करके मैं चर्चा इस बात पर करने की सोच रहा हूं कि जैसे विश्व आतंकवाद यदि एक टॉपिक है तो आप सिविल सर्विस की दृष्टि से इसकी तैयारी कैसे करेंगे, राइट। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ दूसरी जो खबरें हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। एक खबर पिछले दो दिनों से आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, राइट। देखिए, सिविल सर्विस में होता यह है कि इस तरह की जो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, और नो डाउट कि यह जो आरोप है एक बहुत बड़ा आरोप है, इतना बड़ा आरोप है कि देखिए हमारे चीफ जस्टिस साहब तक को यह कहना पड़ा कि जो न्यायालय है उस पर खतरा है और हर कोई इसको इस रूप में देख रहा है। किस रूप में न्यायालय पर खतरा किस रूप में है? देख, इस रूप में खतरा है कि इससे न्यायालय की छवि खराब हो रही है, और अगर न्यायालय की छवि खराब हो गई, इमेज खराब हो गई, तो फिर क्या रह जाएगा? क्योंकि अभी आप देखिए कि जो जितनी भी देश में घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की है दूसरे क्षेत्र की हो, तो जनता का जो विश्वास है, जो उसकी आस्था है, वो न्यायालय से है। वो न्यायालय की शरण में जाता है इस विश्वास के साथ कि उसे न्याय मिलेगा, और जो कहा जाता है न्यायालय उसका देश सम्मान भी करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आरोप लगाया गया है यौन उत्पीड़न का, सवाल यह है कि अपने आप में कितना सच है। अब वो जांच पड़ताल होने के बाद स्थिति आएंगी, लेकिन जब आप इस तरह की घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट के रूप में आपको उस घटना को अकेले में नहीं देखना चाहिए। आप थोड़ा रुकिए और आगे पीछे की घटनाओं पर विचार करने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के तौर पर आपको मालूम होगा कि हमारे राज्य मंत्री थे एमजे अकबर साहब, मी टू जब अभियान चला तो उन पर भी आरोप लगाया गया, यौन उत्पीड़न का आरोप, और उस आरोप के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, और तीन चार दिन पहले फिर अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जिन्होंने लगाया था यह आरोप उन्हें गलत पाया गया है और उन पर अब मानहानि का मामला चल रहा है। वो आरोप ही गलत था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो अब आप देखिए कि बड़ी विचित्र सी स्थिति हो रही है कि जब इतने उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की, संस्थाओं की छवियों को इस तरीके से खराब किया जाएगा, उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा? उसका सोशल इंपैक्ट यह होगा कि हमारे समाज में फिर सीधे सीधे दो वर्ग से बटे हुए दिखाई देने लगेंगे, एक महिलाओं का और दूसरा पुरुषों का। पिछले दो तीन साल के आंकड़े ये बता रहे हैं, ये भी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और जब भी ऐसे आंकड़े आए आपको नोट कर लेना चाहिए कि जो पब्लिक लाइफ है, या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी तंत्र में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कि जो में जो नौकरियां हैं उनमें महिलाओं का प्रतिशत कम होता जा रहा है। महिलाओं का प्रतिशत कम होता जा रहा है का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई योग्यता कम होती जा रही है, उनकी योग्यता तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये जो इस तरह के स्थितियां बन रही हैं आरोप लगाने की, तो लोग महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने में घबराने से लगे हैं कि आगे जाकर के पता नहीं क्या हो जाए। तो नो डाउट कि इसका एक इस तरह का दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। तो देखिए, सिविल सर्विस में होता क्या है कि इस तरह की घटनाएं जब भी घटित होती हैं तो आपको केवल अपने को उस घटना तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे थोड़ा सा फैलाना भी पड़ता है, तब जाकर के आप सही मायने में उस टॉपिक पर तैयारी कर पाते हैं। दोस्तों, एक मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है वेलकम मूव फॉर रिसोर्स एफिशिएंसी। मैं सारी बातें आपसे सिविल सर्विस की तैयारी के संदर्भ में ही कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी के जो मीडियम के स्टूडेंट हैं शायद उनको इससे कुछ मदद मिल सके। देखिए, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बात कही है, एक संस्था है टेरी, उसने एक बात कही है कि भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी कम ग्रोथ रेट है और हमारी गरीबी बनी हुई है, कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके लाइफ साइकिल अप्रोच को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच कहने का मतलब है कि जैसे एक चीज है वो खराब हो गई तो फिर से हम उसे रिसाइकिल कर सके, उसका फिर से यूज कर सके। जैसे मान लीजिए कचरा है तो कचरे से हम खाद बना सकें या बिजली बना सकें, तो भारत में ये स्थिति बहुत कम है। हम लगभग 20-25% रिसोर्सेज के साथ ऐसा कर पा रहे हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है लगभग 50% अपने रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर रही है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर हम रिसोर्सेज को रिसाइकिल नहीं करेंगे और हमेशा नए रिसोर्सेज लेते आएंगे तो रिसोर्सेज तो सीमित है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जब आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ते हैं तो मैंने अभी कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये टेरी की है, TERI। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो जाने कि भाई ये टेरी क्या है। जनरली होता यह कि वो टेरी याद कर लिया, TERI या टेरी याद कर लिया और मेंशन कर दिया। नो, पहली बात कि जब आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ते हैं तो आप इस रिपोर्ट का जो केंद्र है उसे नोट कर लीजिए, फिर देखें कि यह टेरी क्या है। तो जब आप टेरी क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि ये एक संस्था है जिसका नाम है दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है, 1974 में बना था। इससे पहले इसे टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था और तीन क्षेत्रों में इसका स्पेशलाइजेशन है, एक है एनर्जी, दूसरा है एनवायरमेंट, तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि जिसके ऊपर ये रिपोर्ट दे रही है ये संस्था, उसका संबंध इन तीनों से है, एनर्जी से भी है, एनवायरमेंट से भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी है। आपको टेरी को अब जैसे ही थोड़ा सा जानेंगे, देख पूरा का पूरा ये जो एडिटोरियल कमेंट है इसका भावार्थ आपके लिए बदल चुका होगा। आप इसमें से जरूरत से ज्यादा चीजें हासिल कर पाएंगे जो दूसरे लोग हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, ये दूसरी खबर थी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के करंट कंटेंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है, वह है लोकपाल अधिनियम में कसावट की आवश्यकता। इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल छपा था, RC अय्यर जी का लिखा हुआ लेख। अब आप देखिए कि आपको मालूम है कि लोकपाल की नियुक्ति अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है और उसको लेकर के काफी हम लोगों ने बातें भी की हैं, अखबारों में काफी चीजें छपी हैं। इस पर आपको अभी एक आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है, आगे भी इस पर मैं एक दो आर्टिकल आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू अखबार में जो, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश पढ़ नहीं सकते तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा है कि काश हम इन अखबारों को पढ़ पाते तो शायद हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन अखबारों में कुछ अच्छे लेख लिखते मिलते हैं और ऐसे टॉपिक पर मिलते हैं जिनका हिंदी अखबारों में अभाव है, लेकिन उसकी पूर्ति करने के तरीके हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे जो संस्थाएं हैं वो आपकी मदद कर रही हैं, ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा बस थोड़ा सा। और उन्हीं मदद करने वाली संस्थाओं के रूप में एक AFEIS.com है कि हम लोग डेली, आपको मालूम है हमेशा जो इंग्लिश के अखबार हैं उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को लगता है कि सिविल सर्विस के लिए जरूरी है वो हिंदी में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आपकी यह सीमा रही नहीं जाती कि आप हिंदू अखबार नहीं पढ़ पाते, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ पाते या आप इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ पाते। तो यहां उस आपकी पूर्ति हो रही है, लेकिन पूर्ति होने से ही बात नहीं बनती है, बात बनती है कि जो पूर्ति हो रही है आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्तेमाल करने के तरीके को दोस्तों बदलना पड़ेगा। और आज उसी बात को ध्यान में रख करके मुझे लगा कि नहीं, वैश्विक आतंकवाद पर बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ये बात करूं कि वैश्विक आतंकवाद पर यदि आप तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आइए अब मैं मुख्य विषय पर बात शुरू करता हूं। आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे, आप NCERT की किताबें उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हां, विश्व आतंकवाद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 12th का कि NCERT की आप किताब उठा करके देखिए जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व राजनीति, NCERT की किताब, और उसी में आपको एक कंटेंट में एक टॉपिक मिलेगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। जब आप समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ने जाएंगे तो पता लगेगा कि सुरक्षा के उसमें कई तरीके के अंश दिए हुए हैं। नो डाउट कि विश्व आतंकवाद भी उसी सुरक्षा का एक हिस्सा है, लेकिन वो केवल विश्व आतंकवाद तक सीमित नहीं है। जो जलवायु का इतना बड़ा संकट आ रहा है, कहीं ना कहीं विश्व जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़े संकट का प्रमाण है। अगर गरीबी फैल रही है तो वो एक बहुत बड़े संकट का प्रमाण है, अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वह भी एक बहुत बड़े संकट का प्रमाण है। आतंकवाद तो अपने आप में है ही। तो जब आप NCERT की किताब को केवल आधार बनाएंगे तो आप चूक जाएंगे, क्योंकि जब आप NCERT की किताब में आतंकवाद पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा कि आतंकवाद जिसको हम कह रहे हैं तो वो क्या है, कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए खून खराबा किया जाता है, लोगों की हत्या की जाती है, तो वो एक तरह का आतंकवाद है। बात खत्म हो गई, सिलेबस में आपके ये है। फिर आप मदद लीजिए अपने अनसॉल्व पेपर्स की, तो अनसॉल्व पेपर में भी आपको ये दिखाई दे जाएगा कि विश्व आतंकवाद पर प्रश्न पूछे गए हैं, वैश्विक समस्याओं पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन को अगर हम एक बेस बना लें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही वैश्विक समस्या है और उसका रोल सच पूछे तो आतंकवाद से कम नहीं है। तो जब आप इसको देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर किस तरह से प्रश्न पूछे गए, तो उससे आपको एक मॉडल पता लग जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। 2017 में देखिए जो जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न पूछा गया है उसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, फिर आप इसे वैश्विक आतंकवाद पर अप्लाई कीजिएगा, तब आपको उसका चरित्र पता लगेगा कि विश्व आतंकवाद को आपको किस पैटर्न पर तैयार करना चाहिए। ऐसे इस तरह से तैयार करें कि एग्जामिनेशन में जो पूछा जा रहा है और जो आपने तैयार किया है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसमें 100% मेल बैठ जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेल बैठ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आप वहां फर्राटे के साथ लिख करके आएंगे, कम समय में ज्यादा लिख करके आएंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादा अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, स्टेटमेंट है, भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा, अब भारत पर आ गया है। जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है कि अगर हम इसको वैश्विक आतंकवाद पर अप्लाई कर दें तो सीधी सी बात है कि विश्व आतंकवाद क्या है, ठीक है, इस विश्व आतंकवाद से भारत किस प्रकार प्रभावित है, और विश्व आतंकवाद को रोकने के लिए भारत विश्व क्या भूमिका निभा रहा है, भारत क्या कर रहा है या विश्व क्या कर रहा है। यानी कि विश्व आतंकवाद एक मेन टॉपिक हो गया और उसके केंद्र में फिर होगा भारत, याद रखिए भारत। और अब आज मैंने विश्व आतंकवाद के विषय को क्यों चुना है, आपको मालूम है कि कल श्रीलंका में कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस तरह की घटनाओं पर विचार करेंगे तो आप लेटेस्ट चीजों पर आइए कि कुछ समय पहले न्यूजीलैंड में हुआ, कुछ ही दिनों पहले वहां आपके मस्जिद में हुआ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुआ। श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि ईस्टर पर चर्च में हो रहा है, यानी कि यहां ईसाई समूह है उसके खिलाफ हो रहा है, कहीं किसी के खिलाफ हो रहा है, कहीं किसी के खिलाफ हो रहा है। तो आप देखें कि आतंकवाद किस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के विरोध में फैलता चला जा रहा है और उसके अपने रीजंस हैं। तो यहां आपको एक चरित्र दिखाई देता है न्यूजीलैंड और श्रीलंका की, मैंने जो बात की कि यह इस तरीके से हो रहा है। फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया, खासकर 2001 में आपको मालूम है कि अमेरिका में जो घटना घटी थी, ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, उसके बाद से विश्व आतंकवाद पर बहुत तेजी से बातें होने लगी। तो हम एक चीज और भी विचित्र स्थिति से पाते हैं कि आज 2001 के बाद लगभग 18-19 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विश्व आतंकवाद कहां किसको जाएगा इसकी परिभाषा ही तय नहीं हो पाई है कि किसे आप आतंकवाद कहेंगे। तभी तो जब भारत कहता है कि जो आपके जैसे मोहम्मद और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का जो फाउंडर मेंबर है मसूद अजहर, जब उसको विश्व आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में आता है तो चीन उसे स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब है कि चीन उसे आतंकवादी नहीं मानता। तो जब आतंकवाद की परिभाषा पर ही विश्व एक मत नहीं है तो आप सोचिए कि जो चूंकि यह वैश्विक समस्या है तो वैश्विक समस्या का समाधान एक देश तो कर नहीं सकता है, पूरी दुनिया को मिलकर करना पड़ेगा। जलवायु की सब समस्या क्या एक देश उसे उसका समाधान कर सकता है? तो समाधान तो तब करेंगे ना जब परिभाषा पर एक मत हो, और यहां हम देख रहे हैं कि एक मत है ही नहीं है। सीरिया में आप देख रहे हैं कि जब आतंकवाद आईएसआईएस की बात होती है तो एक पक्ष है जो रूस है, वो किसी सरकार वहां का समर्थन कर रहा है, एक गुट का समर्थन कर रहा है, तो अमेरिका दूसरे गुट का समर्थन कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों को हम नियंत्रित कर रहे हैं। यहां भी आप पाते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा निश्चित नहीं की गई है। तो आपको नहीं लग रहा है कि सबसे पहली तो सब बड़ी बात यही है कि विश्व जल्दी से जल्दी आतंकवाद को आइडेंटिफाई करे कि इस तरह की घटनाएं आतंकवाद हैं। तो मित्रों, इस तरीके से जब आप चीजों को लेकर के सोचने विचारने लगेंगे तब आप देखिए कि सिविल सर्विस की तैयारी आपकी कितनी ठोस तरीके से हो पाती है। बहुत ज्यादा सच पूछिए तो टॉपिक सिविल सर्विस के नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से ही टॉपिक हैं बस थोड़े से टॉपिक की जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीच बीच में दोस्तों मैं इस तरह की बातें आप लोगों से करता रहूंगा। आपने महसूस किया होगा कि मैंने थोड़े से अपने डेली ऑडियो लेक्चर के स्वरूप में परिवर्तन करने की कोशिश की है, और मैं चाहूंगा कि आप सब इस परिवर्तन के बारे में भी अपनी राय दें। और आप कुछ और परिवर्तन किसी तरह का चाहते हैं आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से, तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इनफैक्ट वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। और अगर आप लोग अपनी चीज को बताएंगे तो मुझे उससे बहुत सहूलियत अपने इस काम में मिलेगी। दोस्तों डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं: मयंक दधैया अलवर राजस्थान से, राजेश कुमार चंडीगढ़ से, काजल रावत और पार्थ वोरा असम से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।